एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कलम में जितनी धार है उतनी ही उनकी आवाज में भी। एक ऐसी लेखिका और एक्टिविस्ट जिनकी वजह से दुनिया भर में भारत के साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर काफी चर्चा होती है, सुजना अरुंधति रॉय।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम।
हाँ, 1961 में जन्मी रॉय सिर्फ अपने पहले उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखिका ही नहीं है, बल्कि वो सत्ता और अन्याय के खिलाफ लगातार बोलने वाली एक कह सकते हैं बेबाक आवाज भी हैं।
सही कहा, बेबाक।
तो आज हम उनके जीवन, उनके महत्वपूर्ण कामों और उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उन्हें इतना प्रभावशाली बनाया है और साथ ही इतना विवादास्पद भी।
हाँ, ये दोनों बातें साथ चलती हैं उनके मामले में।
हमारे पास उनके जीवन, लेखन और सक्रियता से जुड़े कई स्रोत हैं, तो चलिए इस जटिल और दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं।
बिल्कुल, तो अरुंधति रॉय का जन्म, जैसा आपने कहा, 1961 में हुआ, उस भारत में जो आज़ादी के महज 14 साल बाद अपनी पहचान बना रहा था।
हाँ, वो शुरुआती दौर था।
बिल्कुल, ये नेहरूवादी समाजवाद का दौर था, एक सेक्युलर समाजवादी गणराज्य का सपना देखा जा रहा था, पर साथ ही भविष्य के कई संघर्षों के बीज भी मौजूद थे।
जैसे कि
चाहे वो संसाधनों के बंटवारे को लेकर हों, या फिर क्षेत्रीय पहचान को लेकर, या समाज का जो ताना बाना था उसे लेकर।
और रॉय की अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी तो इसी जटिलता को दर्शाती है ना, केरल की सीरियाई ईसाईमा और बंगाल के हिंदू पिटा।
हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी निजी कहानी में ही भारत की विविधता और उसके जो तनाव हैं उसका अक्स दिखता है। फिर जब वो 1990 के दशक के अंत में साहित्यिक मंच पर आईं, तब तक भारत और दुनिया मतलब काफी बदल चुके थे।
हाँ, वो दौर अलग था।
शीत युद्ध खत्म हो चुका था और नव उदारवादी वैश्वीकरण यानी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, निजीकरण, इन सब पर जोर बढ़ रहा था।
और साहित्य में उस वक्त कौन थे बड़े नाम?
भारतीय अंग्रेजी लेखन में तब सलमान रुश्दी जैसे बड़े नाम थे। उनका काम अक्सर प्रवासी अनुभवों और जादुई यथार्थवाद, जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, उस पर केंद्रित था।
तो रॉय का अंदाज उनसे अलग कैसे था? मतलब क्या फर्क था?
रॉय का काम ज्यादा जमीनी था, ज्यादा अंतरंग। उन्होंने केरल के एक छोटे से गांव की संवेदनाओं में, वहां की त्रासदियों में झांका। उनका फोकस उन छोटी चीजों पर था जिनमें बड़े बड़े ऐतिहासिक अन्याय और दर्द छिपे हुए थे, और यही बात उनके पहले उपन्यास को इतना खास बनाती है।
सही।
फिर उनका एक्टिविज्म का दौर शुरू हुआ, जो भारत में बढ़ते नव उदारवाद और भाजपा के तहत हिंदू राष्ट्रवाद के उभार के साथ साथ चला।
अच्छा, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं, उनका एक्टिविज्म और देश का राजनीतिक माहौल।
बिल्कुल, और कई घटनाओं ने उन्हें खास तौर पर लिखने या बोलने के लिए प्रेरित किया।
जैसे कौन सी घटनाएं?
कई थी। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण हुए।
हाँ, पोखरण।
हाँ, उसने उन्हें अपना वो मशहूर निबंध द एंड ऑफ इमेजिनेशन लिखने पर मजबूर किया।
काफी चर्चित हुआ था वो।
बहुत। फिर नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ वो सालों तक सक्रिय रहीं, जमीन पर भी और अपनी लेखनी के जरिए भी।
हाँ, उसका तो मुझे याद है, द ग्रेटर कॉमन गुड।
बिल्कुल, कश्मीर का मुद्दा, मध्य भारत में आदिवासियों के खिलाफ होने वाली हिंसा, ये सब उनके नॉन फिक्शन लेखन और एक्टिविज्म के केंद्र में रहे। वो नोआम चोम्स्की जैसे वैश्विक विचारकों के साथ मंच साझा करती दिखी, पर उनकी आवाज हमेशा भारत के जमीनी संघर्षों से गहराई से जुड़ी रही।
चलिए उनके शुरुआती जीवन पर थोड़ी और बात करते हैं। जन्म शिलोंग में हुआ, पर परवरिश केरल के आयमानम गांव में हुई माँ मैरी रॉय के साथ, और उनकी माँ खुद एक जानी मानी एक्टिविस्ट थी। इसका कितना असर पड़ा होगा उन पर?
बहुत गहरा असर पड़ा होगा। उनकी माँ मैरी रॉय ने न सिर्फ सीरियाई ईसाई महिलाओं के विरासत के हक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई जीती।
हाँ, वो केस बहुत फेमस था।
बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कोट्टायम में एक प्रगतिशील स्कूल कॉर्पस क्रिस्टी भी चलाया, तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा शायद उन्हें विरासत में मिला,
कह सकते हैं।
और केरल का वो माहौल, हरा भरा लेकिन साथ ही तीव्र राजनीतिक चेतना वाला, और वहां की जाति और वर्ग की कठोर सामाजिक संरचना, उसमें एक बाहरी होने का एहसास, ये सब उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की भावनात्मक जमीन तैयार करते हैं।
फिर 16 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गईं और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। ये दिलचस्प है, क्या लगता है इस आर्किटेक्चर के प्रशिक्षण का उनके लिखने के अंदाज पर? कोई असर पड़ा?
हाँ, कई आलोचक ऐसा मानते हैं, बिल्कुल। उनके गद्य में, खासकर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, एक तरह की संरचनात्मक सटीकता है। हाँ, परतों में कहानी कहने का अंदाज और डिटेल्स पर बहुत ध्यान देना, ये सब दिखता है। तो शायद ये उनके आर्किटेक्चर के प्रशिक्षण से आया हो।
हो सकता है।
दिल्ली में उनका जीवन काफी बोहिमियन किस्म का था, मतलब स्थापित ढांचों से अलग। यहीं उनकी मुलाकात अपने पहले पति आर्किटेक्ट जेराड द कुन्हा से हुई।
और साहित्य में आने से पहले उनका फिल्मों से भी जुड़ाव रहा है ना? ये बात शायद कम लोग जानते होंगे।
हाँ, ये कम लोगों को पता है। उन्होंने 1989 में आई एक टेलीविजन फिल्म थी, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में।
उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें अभिनय भी किया था। वो फिल्म आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की जिंदगी पर थी और कुछ हद तक आत्मकथात्मक भी मानी जाती है।
अच्छा।
फिर 1992 में एक फीचर फिल्म इलेक्ट्रिक मून की स्क्रिप्ट भी लिखी। बाद में उन्होंने फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण से शादी की, जिनके पर्यावरण से जुड़े कामों ने भी शायद उन्हें प्रभावित किया होगा।
तो मतलब लेखन में आने से पहले कैमरे के पीछे और आगे दोनों जगह उनका अनुभव रहा।
हाँ, बिल्कुल।
तो अब आते हैं उनके साहित्यिक कामों पर। जाहिर है शुरुआत तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से ही करनी होगी। 1997 में आया ये उपन्यास और आते ही छा गया। क्या चीज इसे इतना खास बनाती है?
देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई मायनों में खास है। पहली बात तो इसकी भाषा और शैली।
हाँ, भाषा तो कमाल की है।
बिल्कुल,
उसमें गजब की काव्यात्मकता है, भाषा के साथ जैसे खेल रही हो, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी है। कहानी केरल में 1960 के दशक में सेट है और दो जुड़वां बच्चों राहेल और एस्था के नजरिए से उनके परिवार के बिखरने की कहानी कहती है।
और ये कहानी सीधी सरल रेखा में नहीं चलती है ना, टाइम जंप्स हैं शायद।
बिल्कुल नहीं, इसकी संरचना बहुत अनोखी है, नॉन लीनियर जिसे कहते हैं। ये समय में आगे पीछे कूदती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी यादें काम करती हैं, खासकर दर्दनाक यादें।
ये उपन्यास को धीरे धीरे उस त्रासदी तक ले जाती है जिसने परिवार को तोड़ा, और उपन्यास का दिल है समाज के अलिखित प्रेम कानूनों का उल्लंघन,
लव लॉज।
हाँ, मतलब कौन किससे प्यार कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना कर सकता है, खासकर जाति और वर्ग की दीवारों के आर पार।
इसमें अम्मू और वेलुथा की कहानी शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, एक ऊंची जाति की महिला और एक दलित पुरुष।
हाँ, बिल्कुल। जुड़वा बच्चों की माँ अम्मू और एक अछूत माने जाने वाले वेलुथा के बीच का निषिद्ध प्रेम, वो कहानी के केंद्र में है और उसके परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत धोखे और समझौते भी बड़े ऐतिहासिक अन्यायों और पूर्वाग्रहों से जुड़े होते हैं। ये स्मृति, बचपन के आघात और चुप्पी के बोझ पर एक बेहद शक्तिशाली रचना है।
और फिर करीब 20 साल बाद 2017 में उनका दूसरा उपन्यास आया, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये पहले वाले से कितना अलग है?
काफी अलग है, और ज्यादा महत्वाकांक्षी भी कह सकते हैं। मिनिस्ट्री का कैनवस बहुत बड़ा है।
अच्छा।
यह आधुनिक भारत का एक ज्यादा खुला राजनीतिक और बहुरंगी चित्र पेश करता है। इसमें कई आवाजें हैं, कई कहानियां हैं जो आपस में गुंधी हुई हैं।
कहां से कहां तक फैली है कहानी?
कहानी पुरानी दिल्ली के कब्रिस्तान में रहने वाली इंटरसेक्स महिलाएं अंजुम, उनसे लेकर कश्मीर में सक्रिय एक रहस्यमयी आर्किटेक्ट तिलो तक फैली हुई हैं।
तो इसका फोकस ज्यादा राजनीतिक है, मतलब समकालीन मुद्दों पर?
हाँ, कह सकते हैं। ये उपन्यास सीधे तौर पर भारत के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से टकराता है, चाहे वो कश्मीर हो, माओवादी आंदोलन हो, या हाशिए पर रहने वाले समुदायों का संघर्ष। ये उन लोगों को आवाज देने की कोशिश है जिन्हें मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती। ये एक तरह से भारत में असहमति और प्रतिरोध के नक्शे को खींचने की कोशिश है।
तो इसकी संरचना कैसी है? पहले उपन्यास जैसी कसी हुई या अलग?
ये पहले उपन्यास जितनी कसी हुई संरचना वाला नहीं है। ये ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा कुलाश जैसा है। कुछ आलोचकों को ये बिखरा हुआ भी लगा।
अच्छा, फिक्शन के अलावा उनका नॉन फिक्शन काम भी बहुत प्रभावशाली रहा है। आपने कुछ का जिक्र किया भी था।
हाँ, और ये उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि उनका फिक्शन। निबंधों के कई संग्रह हैं उनके।
कौन कौन से प्रमुख हैं?
द एंड ऑफ इमेजिनेशन, जो परमाणु परीक्षण की आलोचना थी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें नर्मदा बांध पर वो मशहूर निबंध द ग्रेटर कॉमन गुड शामिल है।
हाँ।
फिर द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस है, जिसमें वैश्वीकरण, अमेरिकी साम्राज्यवाद पर लेख हैं, पावर पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट ताकत और राज्य हिंसा पर, और वॉकिंग विद द कॉमरेड्स।
हाँ, वो माओवादियों के साथ वाला, वो तो काफी विवादास्पद रहा था।
हाँ, मध्य भारत के जंगलों में माओवादी गुरिल्लाओं के साथ बिताए समय का वो विवादास्पद लेकिन बहुत मार्मिक चित्रण है।
इन सभी नॉन फिक्शन कामों में क्या कोई एक सूत्र है जो इन्हें जोड़ता है, मतलब कोई कॉमन थीम?
बिल्कुल, इन सभी निबंधों का सार ये है कि रॉय के लिए लिखना महज कला नहीं है, वो इसे अन्याय के खिलाफ एक हथियार मानती हैं, गवाही देने का एक तरीका। चाहे वो नर्मदा बांध हो, कश्मीर हो, परमाणु परीक्षण हो या कॉरपोरेट लूट, वो मानती हैं कि सच बोलना, सत्ता से सवाल पूछना, ये लेखक की नैतिक जिम्मेदारी है।
तो उनका नॉन फिक्शन सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं होता, उसमें भी उनके फिक्शन जैसी भाषाई ताकत होती है, एक भावनात्मक ईमानदारी होती है।
तो अगर हम साहित्य में उनके मुख्य योगदान की बात करें तो क्या माना जाए? क्या ये कला और राजनीति का मेल की है?
हाँ, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम है। उन्होंने उपन्यासकार और एक्टिविस्ट, या जिसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उसके बीच की दीवार को जैसे गिरा दिया।
और उनकी भाषा शैली?
वो तो है ही, उनकी भाषा, वो संवेदी अनुभव जगाने वाली, खिलने वाली भाषा अपने आप में अनोखी है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में याददाश्त और सदमे को दिखाने के लिए उन्होंने जिस तरह समय और नज़रिए को तोड़ा मरोड़ा, वो तकनीक बहुत प्रभावशाली रही है। और एक और बात, उन्होंने भारतीय अंग्रेजी लेखन को महानगरों के दायरे से निकालकर केरल के एक छोटे से गांव की मिट्टी, आवाज़ों और सामाजिक बारीकियों से जोड़ा। ये दिखाया कि गहरी से गहरी सच्चाइयां बहुत निजी और स्थानीय कहानियों में भी मिल सकती हैं।
और ये जो साहित्यिक गवाही का विचार है,
right.
मतलब लिटरेरी टेस्टिमोनी,
हाँ, उन्होंने इस विचार को मजबूती से रखा कि फिक्शन लिखने के लिए जिस नैतिक कल्पना की जरूरत होती है, वही कल्पना दुनिया में अन्याय को समझने और उसके खिलाफ खड़े होने के लिए भी चाहिए। उनके निबंध सिर्फ तर्क वितर्क नहीं है, वो कहानी कहने की कला का इस्तेमाल करते हैं सत्ता, लालच और शोषण के तंत्र को उजागर करने के लिए।
लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, उनकी विरासत सिर्फ प्रशंसा की नहीं है, काफी विवाद भी उनसे जुड़े रहे हैं।
हाँ, और ये उनकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद शुरू में उन्हें लगभग पूरी दुनिया ने सराहा, ग्लोबल फेम मिला।
हाँ, बुकर प्राइज के बाद।
फाइन, लेकिन जैसे जैसे वो भारतीय राज्य की नीतियों की मुखर आलोचक बनती गईं, खासकर नर्मदा बांध, कश्मीर, परमाणु नीति जैसे मुद्दों पर, वैसे वैसे उनके प्रति राय बढ़ती गई।
ध्रुवीकरण हुआ मतलब?
हाँ, भारत में वो एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत बन गई। एक तरफ कार्यकर्ता, छात्र, हाशिए के लोग हैं जो उन्हें साहस और विवेक की आवाज मानते हैं,
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ राष्ट्रवादी खेमा है, कॉरपोरेट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और सत्ता प्रतिष्ठान। वो अक्सर उन्हें राष्ट्र विरोधी, विकास विरोधी या कभी कभी देशद्रोही तक कहकर उनकी आलोचना करते हैं।
उन पे ये आरोप भी लगते हैं कि वो भारत की नकारात्मक छवि पेश करती हैं।
हाँ, ये आरोप भी लगता है।
लेखकों पर उनका क्या असर रहा है? क्या कोई प्रभाव दिखता है?
और गहरा निसक रहा है, कह सकते हैं। एक तरफ उनकी भाषा की नवीनता और भावनात्मक गहराई ने यकीनन कई लेखकों को प्रेरित किया कि वो निजी और राजनीतिक इतिहास को नए तरीकों से देखें।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ उन्होंने लेखक के लिए एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल की मिसाल कायम की जो सीधे राजनीतिक संघर्षों में उतरता है। ये काफी चुनौतीपूर्ण रास्ता है। विश्व स्तर पर देखें तो उनका असर साहित्य से आगे तक है। वो पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और पर्यावरण विनाश के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में एक जानी मानी आवाज हैं।
तो इस प्रशंसा और आलोचना के बीच उन्हें पुरस्कार भी मिले और उन्होंने कुछ ठुकराए भी। बुकर पुरस्कार तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा था 1997 में।
हाँ, वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसने उन्हें रातों रात अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया और एक ऐसा मंच दिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी राजनीतिक बातों को रखने के लिए भी किया।
और ये भी अहम है कि वो पहली ऐसी भारतीय थीं जो भारत में रहते हुए ही पुरस्कार जीती, मतलब नॉन डायस्पोरा राइटर।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है।
और बुकर के अलावा
बाद में उन्हें उनके एक्टिविज्म के लिए भी सम्मानित किया गया। 2002 में लेनिन फाउंडेशन का कल्चरल फ्रीडम अवार्ड मिला। 2004 में सिडनी पीस प्राइज मिला।
अच्छा।
हाँ, अहिंसा और सामाजिक न्याय के लिए उनके काम को देखते हुए 2011 में नॉर्मन मेलर प्राइज भी मिला।
लेकिन उन्होंने एक बड़ा भारतीय पुरस्कार लेने से इनकार भी कर दिया था, साहित्य अकादमी।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 2006 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है, उसे लेने से इनकार कर दिया।
क्यों, क्या वजह बताई?
कारण बताया भारत सरकार की औद्योगिक, सैन्य और आर्थिक नीतियाँ जिनके वो खिलाफ थी। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान था। ये दिखाता है कि उनके लिए उनके राजनीतिक और नैतिक स्टैंड किसी भी पुरस्कार से ज्यादा मायने रखते हैं। ये कला और विवेक को अविभाज्य मानने के उनके विश्वास का प्रतीक था।
कोई और दिलचस्प या कम ज्ञात पहलू उनके जीवन या काम से जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता?
एक तो ये कि उनके दोनों मशहूर उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पर आज तक कोई फिल्म या सीरीज नहीं बनी है।
हाँ, ये वाकई अजीब है, इतनी मशहूर किताबें।
शायद इसकी वजह उनके गद्दे की जटिलता है। वो गैर रेखीय शैली जिसे पर्दे पर उतारना मुश्किल है, और ये भी कहा जाता है कि वो अपने रचनात्मक ताम को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं।
ये हो सकता है,
लेकिन उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं।
हाँ, बल्कि वो खुद कई डॉक्यूमेंट्रीज का विषय बनी है, जैसे डैमेज 2002, जो नर्मदा बांध पर उनके एक्टिविज्म को दिखाती है।
इन फिल्मों ने शायद उनकी छवि को एक उपन्यासकार से ज्यादा एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर मजबूत किया है।
सही, उनके लेखन से कुछ यादगार पंक्तियां अगर साझा करनी हो, कोट्स।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से एक बहुत मार्मिक पंक्ति है जो मुझे याद आती है, और हवा कहने लायक विचारों और चीजों से भरी थी, पर ऐसे समय में केवल छोटी बातें ही कही जाती हैं, बड़ी बातें अंदर अनकही छुपी रहती हैं।
वाह, ये तो उपन्यास के सार जैसा है।
हाँ बिल्कुल, ये उस अनकहे सदमे इतिहास के बोझ को पकड़ती है जो निजी जिंदगियों पर पड़ता है।
और उनके नॉन फिक्शन से, एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ
1998 के निबंध द एंड ऑफ इमेजिनेशन से ये पंक्ति उनके पूरे काम का सार बताती है। मुझे लगता है लेखक का काम है परिचित को अपरिचित बनाना, स्थापित ज्ञान को निष्क्रिय करना, और आधिकारिक कहानी की फिर से जांच करना।
हाँ, ये उनके स्टैंड को साफ करता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो लेखक की भूमिका को कैसे देखती हैं, सत्ता और स्थापित विचारों पर सवाल उठाने वाले के तौर पर।
और वो एक मशहूर उद्धरण है जो एक्टिविस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है, एक और दुनिया वाला।
हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। एक और दुनिया न केवल संभव है, वो रास्ते में है। शांत दिन में मैं उसकी सांसें सुन सकती हूँ, या उसकी सांसें सुनाई देती हैं।
कहाँ कहा था ये उन्होंने?
ये उन्होंने 2002 में वर्ल्ड सोशल फोरम में कहा था, और ये दुनिया भर में उम्मीद और प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया।
तो अंत में अरुंधति रॉय की विरासत से हमारे लिए सोचने को क्या निकलता है, क्या टेक अवे है?
मेरे ख्याल से अरुंधति रॉय हमें लगातार चुनौती देती हैं, हमारे आराम को, हमारी चुप्पी को। वो हमें निजी अनुभवों और बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बीच के रिश्ते को देखने पर मजबूर करती हैं। वो पूछती हैं कि छोटी छोटी कहानियां, सच बोलने के छोटे छोटे प्रयास कैसे मायने रखते हैं,
और चुप रहने का मतलब।
हाँ, और कैसे अन्याय देखकर चुप रह जाना भी अपने आप में एक राजनीतिक चुनाव बन जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कल्पना करने की क्षमता, चाहे वो कहानी गढ़ने की हो या एक बेहतर दुनिया की, और नैतिक साहस, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि वो हमें एक ही समय पर प्रेरित भी करती हैं और असहज भी।
बिल्कुल सही कहा, एक जटिल और बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।